ओम शांति। आज 27 जुलाई 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं, क्या होगा छिपाने से, वो और बढ़ता जाएगा। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो, क्योंकि वहां बैठ करके भी दृष्टि विकारी रही तो जिसकी दृष्टि विकारी वो, और जिसके प्रति दृष्टि विकारी वो, क्योंकि उसको मालूम तो होगा कि मेरे प्रति इसकी दृष्टि विकारी है, तो दोनों की बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई ना। अपना तो नुकसान किया तो किया, दूसरे का भी नुकसान साथ में, ये भूल कभी भी ना हो। प्रश्न, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है, कौन सा लक्ष्य अपने सामने रखना है और पुरुषार्थ में आगे सदा बढ़ते रहना है। उत्तर, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना, माता पिता के तख्त नशीन बनना है, हर कदम में फॉलो फादर करना है, ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने, जिससे कुल कलंकित बने, ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते, ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। पहले जो है, आज तो खैर कोई पतित का पावन का कोई मतलब नहीं है, पहले समझते थे कि जब भी हम कोई तीर्थ यात्रा पर जाएं तो हम पवित्र रहें, यहां तक कि नीचे सोना मजबूरी हुआ करती थी पहले, कि जहां जाएंगे वहां साधन तो नहीं होंगे, धर्मशाला में या कहीं भी रुकना पड़ेगा, तो अपने साथ हल्का बिस्तरा लेते थे ताकि कहीं भी सोना हो तो आराम से सो जाएं। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते, वे फिर चकनाचूर होने का मतलब वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते, परमात्मा के डायरेक्शन पर नहीं चल सकते। बाबा की श्रीमत पर चलना है और बाबा की श्रीमत पर चल ही तब सकेंगे जब पवित्र होंगे, क्योंकि आत्मा को चलना, देह को नहीं चलना, सत्यानाश हो जाती, क्योंकि देह समझा तो सत्यानाश हो जाती, फिर बहुत दुखी होते, फिर दुखी भी बहुत, क्योंकि दुख तो ज्यादा उठाने ही पड़ेंगे। जी, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। ये बच्चों के लिए ही गीत है, मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया, मर गया, क्योंकि उसका शरीर निसत्था हो जाता है, ताकत जैसे उसकी लुट गई हो, अब वो कोई भी काम उतना स्फूर्ति से नहीं कर सकता। ये मंजिल बड़ी खबरदारी की, मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं और विचित्र, क्योंकि देह समझने से देह को शक्तिहीन किया और मन अब परमात्मा की डायरेक्शन पर चलेगा ही नहीं, बार बार देह की तरफ आकर्षित होता रहेगा। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं, तुम भी विचित्र हो, तुम आत्माएं भी विचित्र हो और तुम आत्माओं का पिता परमात्मा मैं भी विचित्र हूं। जब वहां हूं फिर चित्र ले 84 जन्म भोग, अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर फिर अगर विकारों में गया तो मरा। ये तो समझते हो, बाप सुख देने वाला भी है तो धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते, धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते। धर्मराज कौन है? शिव बाबा सुख देने वाला है, पर तो हिसाब किससे लेता है? धर्मराज के द्वारा पूरा लेते। मतलब दुनिया वाले समझते कि धर्मराज फिर कोई अलग होगा जो हमारा हिसाब किताब करेगा, परंतु बाबा कहते धर्मराज तुम स्वयं हो। तुम दूसरे को धोखा दे सकते हो, परंतु स्वयं को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता, कसम खा ले कितनी भी, उसके बाद भी वो झूठ बोल देगा, परंतु यहां स्वयं से कोई भी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। बाप दुख नहीं देते, वो तो सुख दाता है, हिसाब किताब पूरा लेते हैं, दुख नहीं देते हैं। आपने गलत भी किया है तो भी बाबा आपको कोई दुख नहीं देगा। धर्मराज भी कोई दुख देगा? खुद है तो खुद दुख देंगे भी? आप धर्मराज हो, आप अपने आप को दुख देंगे? नहीं, दुखी नहीं होगा। धर्मराज की स्मृति रहेगी तो दुख नहीं होगा, धर्मराज की विस्मृति में दुख मिलेगा। यदि ये स्मृति रहे कि मैं ही धर्मराज हूं तो कोई दुख नहीं मिलेगा। नहीं, कर नहीं सकते आप, क्योंकि आपको मालूम है जो भी कष्ट मिल रहा है। भाई जी, धर्मराज आप हैं, आपको मालूम हो गया कि ये मेरे ही कर्म का फल है। धर्मराज को, धर्मराज का मतलब वो सब कुछ जान जाए तभी तो न्याय करेगा, दूसरा न्याय नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे झूठ बोलूंगा। अब वो न्याय क्या करे? मैंने गीता की कसम उठा करके भी झूठ बोल दिया, कुरान पर हाथ रख करके भी झूठ बोल दिया, अब जज क्या करे? परंतु मैं खुद निर्णय करने की सीट पर बैठा हूं, मैं गलती नहीं कर सकता, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो भी कष्ट मुझे मिल रहा है वो मेरे किए कर्म का मिल रहा है, तो ठीक है, उतना मिलेगा, फिर दुख नहीं होता। इस बात को समझना है, यही इस वंडर ड्रामा की सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस, बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं, है ना भगवान? ये यहां भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता। क्यों पड़ता है 100 गुना दंड भाई? फिर क्या हो गया नहीं बताया तो? तो 100 गुना क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। हिसाब किताब तो मैं ही अपना जज हूँ, धर्मराज हूँ, सुप्रीम न्यायाधीश हूँ। अब मैंने जितना किया है उतना मुझे मिलेगा ना? हाँ जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि बताया नहीं उसने, वो 100 गुना दंड क्यों हुआ? क्योंकि आप पाप करते ही रहेंगे। आपने 10 बार किया तो वो 10 गुना हो जाएगा, आपने 20 बार किया तो 20 गुना हो जाएगा, आपने 100 बार किया तो 100 गुना हो जाएगा, 1000 बार किया तो 1000 गुना हो जाएगा। अन्याय नहीं होता, परंतु बताने से क्या होगा कि बताने से बाबा आपको रास्ता बताएगा कैसे इसको रोको, कैसे आप ये गलती और नहीं करो। तो आपने जितना किया उतना मिलेगा ना, आगे बढ़ेगा तो नहीं ना। वरना मर्ज को आपने छुपाया तो कैंसर को आपने फर्स्ट स्टेज पर इलाज करेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, परंतु यदि वो कैंसर बढ़ता ही जा रहा है आपने बताया ही नहीं तो सजा दुख तो आपको ही पाना पड़ेगा ना। क्योंकि तो जितना पुराना होता जाएगा, जितना कैंसर बढ़ता जाएगा, नासूर गहरा होता जाएगा, तो दुख ज्यादा ही पाना पड़ेगा ना। तो इसलिए बताने से वो दुख कम हो जाएगा, आपको स्मृति आ जाएगी कि ये मेरे ही कारण मुझे मिला, नहीं तो वो जितना गुना बढ़ता ही जाएगा, इसलिए बढ़ेगा। बाकी ये नहीं कि बता दिया तो आधा माफ हो जाएगा। आज बताने के बाद भी आप पाप करते रहें तो कहां से माफ होगा? मान लो आपने बता भी दिया और आप वही पाप करते भी रहे तो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हुआ। वो बताना बताना नहीं है, बताने के बाद इलाज भी करना जरूरी है। डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, आप ये परहेज करो, आप वो परहेज नहीं करते, वो दवाई नहीं खाते, तो बढ़ता ही जाएगा। बताने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, इसलिए 100 गुना दंड का मतलब है बाबा की श्री मत पर ना चलना। बाबा की श्री मत पर ना चलने के कारण ही सजा बढ़ती जाएगी, चाहे बताओ या ना बताओ। मतलब बताने के बाद श्री मत पर चलना बहुत बहुत जरूरी है। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नरक का द्वार बने, नरक का द्वार काम विकास बने, फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। आप धीरे धीरे क्लास में भी आना बंद कर देंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करें विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो छिपाते, बहुत बच्चे हैं, बाबा को मालूम है कि वो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है, छिपाया और मरा, ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है, ऐसा तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता है तो बाप कहते हैं ना, ये बच्चा तो मुआ भला, मर जाता तो अच्छा था, पैदा होते ही इसका गला घोट देते तो अच्छा था, आज ये हमारे लिए ऐसा नासूर नहीं बनता। ऐसे कोई ना समझे, बाबा को थोड़े ही मालूम है, ये कोई ना समझे कि बाबा को मालूम नहीं है। हाँ, ये ब्रह्मा भल बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वे बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती, मैं तो सुख देता, फिर सजाएं कौन देता है? हर एक को अपनी चलन के अनुसार मिलती है। कौन है न्याय, कौन है जज यहाँ पर? धर्मराज खुद है ना, क्योंकि बाबा सजा देता नहीं, बाबा को सब कुछ पता है परंतु बाबा सजा देता नहीं, तो सजा फिर कौन देता है? स्वयं, स्वयं खुद ही लेता है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें नारियों को बहुत खबरदार रहना है, नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते, क्यों क्यों रहते? हाँ जी, नारी बहुत सताई जाती, नारी क्या होती है? बहुत सताई जाती। बाप आकर माताओं पर कलश रखते, इसलिए बाबा आकर माताओं पर कलश रखते हैं तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते, बाबा हालांकि क्रोध भी कम दुश्मन नहीं है, नंबर दो का दुश्मन तो क्रोध है ही, परंतु बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता, कहां फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है, बड़े आदमी जास्ती पतित होते क्योंकि उनके पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नग्न होने से बचाओ। सब दुखी हैं, माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं, माताओं को बहुत खबरदार रहना, माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए, नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी, ये परियां जो हैं जी, मतलब जो परियों के नाम रखे गए, माताओं को ही सुंदर मतलब आकर्षक दिखाया तो उन पर ही ये दोष भी आया। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है, असुर पतित को कहा जाता है, असुर पतित को कहा जाता है, ये सारी पतित आसुरी दुनिया है, पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं, पावन कोई होता नहीं। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वे कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है, वे कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है, रहते तो फिर भी पतित दुनिया में हैं और हैं भी निवृत्ति मार्ग वाले, निवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि ये संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं, एक भी पावन। त्रेता को भी कहा जाता है दो कला कब, सतयुग में है 16 कला, त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं, वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए, विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है, मूल बात यह है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। आप पवित्र बन फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल बैठती है। फिर ये बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे, फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना। अब इस इन दो लाइनों को पढ़ने से समझ में आता है कि कहीं हमारी मीटिंग लगेगी, ब्रह्मा बाबा बैठेंगे, धर्मराज बैठेगा शिव बाबा के सामने, उनकी सारी गलतियां बताई जाएंगी और फिर जो है ना उसका न्याय होगा, फिर उसको सजा मिलेगी। ये ब्रह्मा बाबा कहो, शिव बाबा कहो, आप कहो, रोजाना जो हम ये मुरली सुन रहे हैं, चाहे ये सुनाने के निमित्त ब्रह्मा बाबा हो, सुनाने के निमित्त दीदी हो, तो तू मुरली तो बाबा सुना रहा है और धर्मराज हम हैं, तो सब धर्मराज जो बाबा मुरली सुना रहे हैं, वो मुरली जो है हमारे लिए न्याय करने का आधार है। फिर जब हमें कोई सजा मिल रही है तो हमें समझ में आ रहा है ना कि मैं विकार में गया, जिसके कारण मुझे ये कष्ट ये दुख हो रहा। तो नेचुरल अपने आप ही अपने आप को क्या देंगे, महसूस भी करेंगे कि मुझे ये क्यों मिल रहा है, खुद को समझ में आएगा। धर्मराज कोई ऊपर से वो तो दुख देंगे, वो तो अपना हिसाब पूरा करेंगे और आपको भी अपना हिसाब पूरा करना है। कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते, ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं, बाबा जानते हैं, अगर कहें ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघन डाल। उनको यदि कहो कि तुम मत आया करो, विकार में जाते हो, तो क्या करेंगे, वो ट्रेटर बन के विघन डालेंगे, हंगामा करने लग जाते हैं। इसको कहा जाता है पतित राज्य, काटो की दुनिया, राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा वे इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए, सच्ची दिल पर साहेब राजी बुद्धि का ताला खोल देंगे, सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघन पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिप कर बैठ जाते थे, यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, देखें क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, मतलब बैठे रहेंगे, फिर कन्याओं को गंदी नजर से देखते रहेंगे, चंचलता करते रहेंगे, तो क्या होगा, पाप बनेगा ना। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वो बैठ समझाते हैं, उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो, तीर्थ यात्रा पर कभी विकार में नहीं जाते हैं, ये लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर, तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा, तो चकनाचूर हो जाएगा। ये ख्याल में रखना है, हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत है, तो बाबा आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, बाबा समझाते हैं। ये तो ख्याल रखना होता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अगर बीचे में ही कोई विकार है, है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, परंतु उसमें ही कोई विकार है, दे अभिमान व लोभ आदि होगा, तो सर्विस कर नहीं सके, वो सर्विस कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दे अभिमान होगा, मैं कैसे समझाऊं, फिर नापास हो जाते, जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी, जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं, कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे, महाराज महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना, वे तो किंग क्वीन के साथ रहते, वे तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता है। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है, यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती, शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, सजा तो उनको देनी, सजा तो उनको देनी है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर, फादर थोड़े ही ऐसे कुछ करेंगे, बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि ये पतित है, ये पतित है। मुश्किल पवित्र रहते हैं होंगे, शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है, बहुत हैं जो छिपाते, जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है, यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे, पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ ये बच्चे भूलते रहते हैं, कोई तो सारे दिन में एक घंटा आधा घंटा भी याद नहीं कर, एक घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल, बाबा खुद कह रहे हैं बड़ा, किसके लिए, जो विकार में जाते। फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते, विकार में जाते रहेंगे, बाबा को अच्छी तरह याद नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या बनेंगे, दास दासियां आकर बनेंगे। पुरुषार्थ कर मात पिता के तख्त नशीन बन दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे ये कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर, तुम ब्राह्मण कौन सी यात्रा पर हो, याद की यात्रा। हमने कोई इधर उधर घूमने थोड़ा जाना है, हमने तो अपने सुधार की यात्रा पर चलना, कितना हमारे में सुधार हो रहा। अगर कुछ ऐसी चलन चल, सुधरने की बजाय बिगड़े। कुल को कलंक लगाया, ये देखो ये है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे, जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल वर्ष बने को। 84 जन्म, फिर गर्भ में गए, फिर जन्म लिया, फिर गर्भ में गए, फिर जन्म लिया, फिर गर्भ में गए, ऐसे जेल वर्ष बने रहे। इस समय सभी मनुष्य जेल वर्ष हैं, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना, अब तुम्हें तो गर्भ जेल में जाना नहीं है। कब? जब तुम पवित्र बने हो तो। यदि तुम पवित्र नहीं बने तो गर्भ जेल में ही जाना। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए? भले तुम कहां भी बैठे हो, ट्रेन में हो या कहां भी तुम यात्रा पर हो, याद में रहना है, काबा की श्री मत पर चलते रहना है, कोई गलती नहीं करनी है। कहते तो सब है हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, और नारायण को वरने वाला कौन और लक्ष्मी को वरने वाला कौन, इसका अंतर कोई होगा? आज दो खड़े कर दिए हमारे सामने, हम नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे। अब कौन नारायण को वरेगा और कौन लक्ष्मी को वरेगा? भाई वरा तो दूसरे को जाता है ना, मतलब जो बहन जाके बनेगी वो नारायण को वरेगी, जो भाई जाके बनेगा वो लक्ष्मी को वरेगा, है ना? और प्राप्त करना भी इसका अर्थ ले सकते हैं दूसरी तरफ, कि जो जैसा पुरुषार्थ करेगा या तो जाके वो लक्ष्मी बनेगा या वो नारायण बनेगा, मतलब जिस पद को प्राप्त करेगा उसको भी कह सकते हैं। बाकी वर का बनने का मतलब यही होता है कि किसको आपने चुना, पसंद किया, तो जिसको बनाया अपना, तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद ना पाया तो बाकी क्या किया? यदि वहां जाकर के भी आप लक्ष्मी या नारायण नहीं बने तो फिर क्या पद पाया? बाबा सावधान कर देते हैं, बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं, जैसे बंदर बंदरियां, मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं। जो आप पवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो गए, हो जाते। बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है, अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई, हैं, विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं, पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेअद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो पट से पवित्र बनना चाहिए ना। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी, तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाप को निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनमें से भी माया कोई कोई को नाक से पकड़कर क्या करती है, गिरा दे। मतलब किसी का नाक कोई बंद कर दे, सांस रोक दे, फिर वो जो है ना वो फिर हाथ पैर नहीं चला सकता, क्योंकि उसको तो मौत के कुछ नहीं कर सकता। फड़फड़ाता तो रहेगा, परंतु वो अटैक करने वाला नहीं काम करेगा, तुरंत हाथ खड़ा करेगा। वे रिगार्ड नहीं रखते। ओहो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है, बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना, जरा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। वो है ही निराकार। शिव बाबा कैसा है, निराकार है, उसका शरीर नहीं है। देह का अहंकार उनको हो ना सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे, मर गई दुनिया, हमको अब बाबा पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर, हम बाबा के साथ कहाँ जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, अर्थात अपने अंदर हर पल सुधार करते जा रहे हैं। अब हमारे जीवन में कोई कमी कोई दिक्कत नहीं। बाबा लेने लिए आया है, ऐसे ना हो कि माया कहीं कान काट, माया क्या करेगी, नाक कान से कान काट दे। फिर कान काटने का काम क्या है, माया कान कैसे काट देती है, उसके पास चाकू नहीं, वो ज्ञान सुनना बंद कर दे। ज्ञान सुनना, बैठा क्लास में होगा परंतु बुद्धि उसको विकारी दुनिया में होगी, उसको कुछ भी सुनाई, उसे कुछ भी सुनाई नहीं, क्योंकि जो बुद्धि में होगा सुनाई तो वही देगा। फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना, ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना। लोन पानी नहीं बनना, आपस में झगड़ा नहीं करना, विकारी संबंध से और देवी संबंध से तोड़ निभाना, विकारी संबंधियों से भी देवी संबंधी, मतलब लौकिक और अलौकिक दोनों के साथ तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनो, यानी कि एक तरफ से स्नेही बनो और दूसरी तरफ से स्नेही नहीं बनो। एक को तुम बहुत अच्छे हो, दूसरे को कहो कि तुम अच्छे, हमारे लिए तो सब अपने, सब अच्छे हैं। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देखकर खुश हो। कौन से बच्चों को देखकर खुश होते हैं? सपूत बच्चों को देखकर ही खुश होते। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे, सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अभी हम यात्रा पर, कौन सी यात्रा पर है? याद की यात्रा, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना, किसी में भी ममत्व नहीं रहे। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना, खुश रहना है। वरदान कराने वाला करा रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह, कराने वाला करा रहा है। कब आएगा, कब होगा कराने वाला करा रहा है? जब आप बाबा की श्री मत पर कोई काम कर, और कर रहे हो अपनी मर्जी से, और कराने वाला करा रहा है, वो कैसे कराएगा? उसने कराने के लिए ऑर्डर दिया है, आपने उसे फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये तो बात तभी निश्चित होगी ना। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर, मैं तो निमित्त हूं, मैं बाबा की श्री मत पर कर्म करने के लिए निमित्त हूं, अपने मत पर नहीं। हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। क्या बन जाएंगे? बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूं ये भान आया तो बेपरवाह बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ है ये स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, उन्हें ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और होने वाला है वे और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है, उससे अच्छा कोई नहीं, इसलिए उसका हर कर्म क्या है? अच्छा स्लोगन है। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन, आप अपने में शांति के और सहयोग के, शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को क्या देना है? सुख चैन की अनुभूति कराने तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।